कौन सोच सकता था कि माँ के मरने के बाद हंसी आएगी।
मेरी और तुम्हारी हंसी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तुम हंसोगी तो मैं भी हंसूंगा, तुम नहीं हंसोगी तो मैं भी नहीं। हमेशा मुस्कुराती रहो, खुशकिस्मत रहो।
आपके ऑफिस को भी आपसे छीन लिया गया डैड।
धीरे धीरे मेरी चमड़ी मोटी होती जा रही है, गेंडा हुआ जा रहा हूं। जिस चीज को सोचकर मैं तड़प उठता था वो तुम्हारी मां की मौत थी, अब वो भी हो चुका। बाकी सब तो पैसा और ऑफिस है।
बिना पैसों के आपको डर लगता है?
हाँ डर लगता है, बिना पैसों के डर लगता है, नाहिद के ना होने से और मौत से।
मां की जुदाई का गम मिटने वाला नहीं है।
मगर तुमको तो जिंदगी जीनी होगी।
फिर तो उन चीजों का सहारा लेना पड़ेगा जिन्हें मैं पसंद करती हूं, है ना?
हाँ सहारा लेना पड़ेगा, मैं मुआफिक हूं।
आप मेरी पसंद पर राजी होंगे?
हाँ मुआफिक हूं।
आपको इत्मीनान है?
हाँ मुतमईन हूं।
तुम तो अपनी मां के पास रुकने वाली थी।
कह रहे हैं कि उन पर मेरा हक नहीं है।
कौन कह रहा है?
फरजाद।
क्या?
हाँ तुम्हारा भाई खड़ा है दरवाजे पर, तुमसे काम है। सारा तुमने ये कहकर कि पैसों का बंदोबस्त हो गया है मुझे खरीद लिया है। अभी इतना पूछ रही हूँ, तुम कहोगे कि लगता है ये लड़की अपने बाप की मीरास मांग रही है। देखो मैं बस इत्मीनान करना चाहती हूँ। मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि मैंने हिसाब लगाया है कि आगे पीछे कम से कम 70 मेहमान होंगे। पहले तो बाबा की कब्र पर फल बांटना होगा और हवा गर्म होने की वजह से शरबत तो देना ही होगा। कब्र पर जो फल देने की मैं बात कह रही थी उसका मतलब है 70 सेब, 70 ककड़ी, 70 केला, 70 गिलास शरबत के लिए, प्लास्टिक के 70 गिलास, कब्र पर कुरान पढ़ने के लिए खोगा, फिर उसके बाद रेस्टोरेंट में चिकन खाने में देना होगा, उसके साथ सलाद या दही भी देनी होगी, साथ में ठंडा भी देना होगा ताकि गले में ना फंसे। उन सबको अगर जोड़ा जाए तो लगभग कब्रिस्तान के खर्चे के साथ हर आदमी का 500 या 600 तुमान खर्चा होगा। कब्रिस्तान का पत्थर भी मैं ही नसब कराऊंगी। बाबा की कसम मैं ये सारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी। हाँ जब मैंने कहा कि पैसों का बंदोबस्त हो गया है तो माँ और मोहसिन की आंखों में ऐसी चमक आई कि पूछो मत। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। मेरे बाबा के अकाउंट में पैसा है मगर वो तो अभी हमें देंगे नहीं। पहले वारिस का तायुन होगा, फिर बंटवारा होगा, उसके बाद मिलेगा। सारा जान तुम कितने पैसों का बंदोबस्त कर सकती हो? टोटल खर्चा यही कोई 6 लाख के करीब होगा, हो जाएगा?
अस्सलाम वालेकुम।
सलाम। मैं परेशान हो रही थी, बिन बताए कहाँ चली गई थी?
हम लोग जमकरान चले गए थे।
जियारत कबूल हो, जियारत कबूल हो। बताया होता तो हम लोग आया थे, आप लोगों को लेकर हम लोग बहुत परेशान थे।
देखो तो जरा, देखो तो अभी भी चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। चलो ऊपर चलो, आओ ऊपर चलो। कंबर खाना, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं जानती कि गर्मी है या ठंड है, प्यासी हूं या भूखी हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटी तुम आशिक हो, यही हाशिम खान जब साल में 3 महीने सरकारी सफर पर जाते थे और जब नहीं होते थे, तुम्हारी जैसी मेरी भी हालत होती थी।
किसी की भी हालत मेरे जैसी नहीं है।
कुछ हुआ है क्या?
अच्छी बुरी खबरें हैं। अच्छी खबर, बुरी और बीच की।
देखो, तुमको उससे, अपने शौहर से इत्मीनान है?
मैं बस खुदा से मुतमईन हूं। मुतमईन हूं कि अगर मुझ पर कोई मुसीबत आती है तो हौसला भी वही देगा, अगर कुछ अच्छा भी हुआ तो उसका भी पहलू होगा।
बेखबर छोड़कर कहां चली जाती हो?
माफ करना बेटी, जरा वो गिलास दे दो, मैं दवा खा लूं।
पैसों का पूना को दिया हुआ वादा सरदर्द बन गया है। कहती है वालिद की फातिया खाने के लिए पैसा चाहिए, वो भी हलाल पैसा।
सिर्फ बाप की फातिया खाने के लिए हलाल पैसा चाहिए? लगता है बाद में फिर हराम की खाना शुरू कर देगी। क्यों? तुम्हारा शुक्रिया, इसको भी अलमारी में रख दो।
अभी फिलहाल इतना ही समझी तो बहुत है।
इसको भी रख दो वहां, गिर जाएगा पानी, गुनाह होगा।
वो सर बुलंद होकर अपनी माँ से बोली है, फातिया खाने का खर्चा भी मैं उठाऊंगी, यहां तक कि ककड़ी का भी हिसाब कर लिया है। बेचारे फरजाद ने भी मुझे 1 लाख से ज्यादा नहीं दिया है। 70 मेहमानों का खर्च है, सब कुछ किफायत करके भी जोड़ा जाए तो कम से कम 6 लाख का खर्च है।
क्यों? मगर क्या बात है, क्या लोगों को फिरोजा खिलाने वाली है जो 6 लाख खर्च होगा? लोगों की इज्जत रखने की बात कही है, न कि फिजूल खर्ची करने को।
क्या मालूम।
ना बैठो, वो पंखा भी बंद कर दो, अभी हवा ठीक है, बेफायदा नाच रहा है, बिजली खर्च होगी। मैं इसी 1 लाख तूमान में 70 आदमियों का खाना कर दूंगी। नहीं, 1 लाख तो 2 लाख पकड़ लो। देखो, अभी जा रही हो तो वो लाइट भी बंद कर दो, ताकि मैं भी अपना बिस्तर लगाकर सो जाऊं। तुम्हारा शुक्रिया।
कहाँ?
मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, कावे मुझे लेने आया है।
उसे तो डैड की कंपनी जाना था।
नहीं पता, कल रात मैसेज किया था कि मुझे लेने आ जाए।
मैसेज किया था?
मेरे बुलाने का मकसद उसको जवाब देना था कि
मुआफिक हो।
तुम मुआफिक नहीं हो।
नहीं, जो तुम काम कर रही हो मैं उससे बिल्कुल भी मुआफिक नहीं हूँ। जो काम तुम करने जा रही हो उसे शादी नहीं कहते हैं। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, शादी ब्याह का एक अपना कायदा कानून और रस्म रिवाज है, और वो तरीका ये कहता है कि हर चीज़ की खबर अपने बाप को देनी चाहिए।
मैं जाकर यही कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा जवाब हाँ में है, मगर वो रस्म और रिवाज के मुताबिक जाकर डैड से बात करें। कल रात डैड मूड में थे, उन्होंने कहा कि जो कुछ मैं चाहती हूँ वो भी वही चाहते हैं।
काश ऐसा ही हो।
डैड ने अभी तक मेरे साथ अपना वादा निभाया है।
कावे आया?
हाँ।
उसको बोलो रुके, तुम भी ऊपर आ जाओ।
बाबा तुम राजी हो मैं डैड से बात करूं? कावे को कहूं कि वो डैड से जल्दी बात करे।
बाबक कावे को जाकर कहो मेरे ऑफिस जाए और तिजोरी खोले, उसमें जो कुछ है निकाल लाए। ये चेक है सेक्रेटरी और चौकीदार का हिसाब चुकता कर दे, चाबी भी बैंक के आदमी के हवाले कर दे। अभी तक इस गंदी हालत का आदि नहीं हुआ हूं, अभी तक ये आदत नहीं अपनाई है कि मेरा चेक बाउंस हो जाए।
मश्ती, चाय का समावर बंद करो और जाओ। खुदा हाफिज। मोहतरमा तुम भी, उसकी भी फिक्र न करो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। ये तो हाथ है, जिसका भी पड़ेगा टूट जाएगा।
मैं बैंक का नुमाइंदा हूं। जनाब साइश्ता आप हैं?
नहीं। मैं उनका सच्चा दामाद हूं जिसे आज हां में जवाब मिला है।
इस 60 मिलियन का क्या मामला है?
ये रकम अहमद रजा बाबाई ने जनाब शाइस्ता के इल्म में लाए बगैर और उनकी इजाजत के बगैर मतीन नामी शख्स को दे दी।
हाँ, ये बात रिपोर्ट में है। फिर घर का क्या?
वो उनकी बीवी के नाम है, जिनका इंतकाल हो चुका है। 20 साल पहले अपनी बीवी के नाम कर दिया था। उनकी सभी माल और दौलत का जिक्र उस लिस्ट में है जो आपकी खिदमत में पेश है।
अच्छी बात। आपके इस दिवालिया होने के ऐलान को जो आपके मुवक्किल ने पेश किया है कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट की तरफ से एक इंचार्ज मुइन किया जाएगा जो कि ये पता लगाएगा कि दिवालिया की रिपोर्ट जो पेश की गई है वो सही है या गलत। फिर वो उसकी तायद करेगा और देखेगा उसमें कोई हेर फेर तो नहीं हुई है, और यहाँ तक कि उस ऑफिस के बारे में भी पता लगाया जाएगा जिस पर बैंक का कर्जा है।
हेलो। हाँ,
सलाम अंकल समसामी।
सलाम बाबक बेटे, कैसे हो?
शुक्रिया, मैं आपसे मिलना चाहता था।
खैरियत तो है इंशाल्लाह।
अंकल, एक ऐसी खैरियत जो मुसीबत में बदल सकती है।
मैं घर जा रहा हूँ, घर आ जाओ।
याल्ला, आ जाओ, यहीं रख दो, ये रख दो, यहीं रख दो। धीरे धीरे इसे इस तरफ, ध्यान से, धीरे धीरे, हाँ धीरे से, ठीक, हाँ, इस तरफ आ जाओ। खुदा तुम्हारा भला करे, खुदा तुम्हारा। तकलीफ दी, शुक्रिया तुम्हारा। ला, थोड़ा इधर, बचा के जरा इधर, ठीक है, यहाँ ठीक, बिल्कुल ठीक, यहाँ इधर, बिल्कुल सही, यहाँ ले।
अंबर खानम, ये सब क्या हो रहा है?
क्या हो रहा है? तुम्हारे बाबा की फातिया खाने में खाना पकेगा, उसकी देग आई है। ओह, पड़ोसियों आओ मदद करो, मैं शोहर की खिदमत करना चाहती हूँ। यहाँ क्यों रख रहे हो?
कंबर, तुम इस कदर शोर क्यों मचा रही हो? तुम हुक्के की तरह गुड़गुड़ क्यों कर रही हो?
रख दो।
मतलब ये देग बाबा की फातिहा खाने के लिए है?
रेस्टोरेंट क्यों? एक तो कीमत आसमान पर होती है, तुम लोग जाओगी कब्रिस्तान, मेहमान भी आ जाएंगे यहाँ, औरतों का बंदोबस्त भी वहाँ हो जाएगा।
हाँ, ठीक कह रही हो, हम मर्दों का भी अपने पड़ोस में अकबर आ गए ना, वही इंतजाम हो जाएगा।
इस तरह खुदा को भी अच्छा लगेगा कि फिजूल खर्ची नहीं हुई। देखो पुणे, मैं उस आधे पैसे में जो तुम खर्च करना चाहती थी ये रस्म पूरी करूंगी। खर्च की जगह औरतों का हुनर इस्तेमाल करना सीखो, अब जाओ ऐलान लिखने और बांटने के काम पर लग जाओ। पता भी यहाँ का लिख देना। जाओ। ये मेरी और डैड की तरफ से पूना के वाले की फातिहा खानी के लिए है। बगैर झिझक के ले लूंगी क्योंकि नेक काम के लिए। तुम्हारा शुक्रिया। सलाम।
सलाम।
मैं जा रही हूं।
कहाँ?
उसी मस्जिद के कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट का पता लगाने जो एड्रेस पासबुक पर लिखा हुआ था।
बेटी तुम क्यों जा रही हो? पुलिस खुद ही जाएगी।
हर किसी को अपना काम करना चाहिए। पुलिस अहमद रजा नाम के मुलजिम का पता लगाएगी। मैं भी अपने शौहर का पता लगाऊंगी। मैंने इसलिए कहा शायद आप आना चाहेंगे।
जी फरमाइए।
आप यहां के जिम्मेदार हैं?
जी हां।
ये पासबुक खोलेंगे। आप अपने इस कस्टमर को पहचानते हैं?
अहमद रजा बाबाई।
आपका कस्टमर है? यहां अकाउंट है?
हाँ, इस अकाउंट को पहचानता हूं। इस अकाउंट को पहचानता हूं क्योंकि इस छोटे से बैंक में हमारे मोहल्ले की मुश्किलों के लिए यह रकम बहुत बड़ी है। मगर खुद अकाउंट के मालिक को मैंने कभी नहीं देखा। इस अकाउंट की भी अलग कहानी है।
मैं सुन रहा हूं। इस अकाउंट की कहानी क्या है?
इस अकाउंट की कहानी उसके पहचान कराने वाले से शुरू होती है। अलबत्ता पहचान कराने वाले को जानता हूं, लेकिन इस अकाउंट के मालिक अहमद रजा बाबाई को, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, मैं नहीं पहचानता। इस मोहल्ले में इस अकाउंट के खुलने की भी एक कहानी है जो एक दूसरे से मुंतकिल होते हुए नस्ल दर नस्ल कहानी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये ऐसा अकाउंट है जो रात के अंधेरे में खोला गया और बहुत से लोग हैरान और परेशान रह गए।
पहचान कराने वाला कौन था?
इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।
जनाब सादिकी,
क्या हुआ?
कुछ नहीं हुआ मोहतरमा। एक राज था, एक ऐसा राज जो एक 90 बरस के आलिम के साथ दफन हो गया, और आपके शौहर जो लापता हैं और भी लापता हो गए हैं।
एक बात बोलूं जनाब?
कहो।
अभी की हमारी सूरत हाल वही जीरो वाली है, सही है ना?
नहीं, सही नहीं है। अभी की सूरत हाल यानी लोगों का 8 अरब का उड़ाया हुआ माल, उसका असली मुल्ज़िम अभी भी अहमद रज़ा बाबाई है, यानी यह कि उसको ढूंढना ही होगा।
अगर मरहूम पेशनवाज जिन पे खुदा रहमत करे उनका कोई रिश्तेदार होता तो शायद हमारी कुछ मदद हो जाती। अहमद रज़ा के बारे में और उस 110 मिलियन के बारे में?
कोई ख़ानदान में नहीं है मगर मालिक मकान तो है ना, क्यों चलते हैं, शायद कुछ मदद मिल जाए।
ये सारी बातें अभी मैंने पुलिस को भी बताई हैं। ये कि ये 110 मिलियन कहां से अकाउंट में आया मालूम है, अहमद रजा बाबाई के जरिए। उस अहमद रजा बाबाई को इस मस्जिद के पेश नमाज जनाब शुजाई के अलावा, जो कि अब मरहूम हो चुके हैं, ना कोई जानता है ना पहचानता है, ना कोई पता ठिकाना मालूम है। अब ये कि आपके शौहर जनाब शुजाई से कैसे जुड़े, और ये कि तेहरान के इस छोटे से पुराने मोहल्ले की इस छोटी सी मस्जिद के मामूली खजरुल हसना अकाउंट में इतनी बड़ी रकम कैसे जमा हुई, कुछ मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि न तो कर्जा वसूलने आया और न ही पैसा निकालने आया। लेकिन जो चीज के मालूम है ये है कि उसने इस पैसे के जरिए इस मोहल्ले में कई लोगों की परेशानियां हल की और कई घरानों की इज्जत बचाई है। एक कैदी जेल से छूटा है, 3 शादियां अंजाम पाई हैं। इस पैसे की वजह से जो कुछ के हुआ है उसका चर्चा इस मोहल्ले में एक दूसरे से मुंतकिल होते हुए कहानी की शक्ल इख्तियार कर चुका है और इसका जिक्र सबकी जबान पर जारी है। ये ऐसी नामालूम कहानी है जो इस कमरे में जनाब शुजाई और अहमद रजा बाबाई के दरमियान अंजाम पाई, और बस, कोई और नहीं जानता।
क्या इन मरहूम के घर वालों को इस वाकया की खबर है?
खुदा रहमत करे, जनाब शुजाई को कभी औलाद नहीं हुई। उनकी अहलिया के इंतकाल को भी 20 साल गुजर गए। उन्होंने आपको अपनी उम्र दी, खुदा रहमत करे उन पर। 30 साल पहले मरहूम अपनी बीवी को इस मोहल्ले और इस घर में लेकर आए थे। वो लोग अहवाज से यहाँ आए थे।
अच्छा, तो ये अहवाज के रहने वाले थे? बाबाई का वतन भी अहवाज ही है।
आपने जो आने जाने वालों के बारे में पूछा तो लोगों का आना जाना ज्यादा था। अगर किसी को कोई परेशानी होती तो मरहूम का दरवाजा उनके लिए खुला रहता।
इस दौरान किसी अजनबी पर नजर नहीं पड़ी जो पहली बार यहाँ आया हो?
अजनबी भी पहचान वालों की तरह यहाँ ज्यादा आते जाते थे। जब कोई घर लोगों की उम्मीद की आमाजगाह बन जाए तो क्या अजनबी और क्या गैर अजनबी, मैं नहीं पहचानता।
अहमद रजा बाबाई का नाम क्या आपने कभी सुना है?
मैंने नहीं सुना।
शुक्रिया।
अगर परेशानी में मुब्तला कुछ लोगों की इज्जत बच गई, अगर ये कैदी आजाद हो गया, अगर उस पैसे से एक लड़की की शादी हो गई, एक लड़का शादीशुदा हो गया, तो दुनिया वालों को जो बोलना है बोले। मैं ना तो उस पैसे पर शक करती हूं और ना ही अहमद रजा पर।
इमरजेंसी वार्ड में मुतरमा डॉक्टर जियाई, इमरजेंसी वार्ड में।
थक गई हो, जाओ 2 घंटा सो जाओ, बीमार दिखती हो, अपनी चाय भी साथ लेकर जाओ।
डॉक्टर मोमिन इमरजेंसी में, डॉक्टर मोमिन इमरजेंसी में।